मार्गदर्शन।
श्रोताओं, साप्ताहिक कार्यक्रम मार्गदर्शन की 72वीं कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं स्वाति और संयुक्त मेसाम का सलाम स्वीकार कीजिए। कार्यक्रम में वास्तविक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की जाएगी।
आजादी या स्वतंत्रता वो चीज है जो मानव की आंतरिक अभिलाषा है। वास्तव में स्वतंत्र व्यक्ति वो है जो जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो और लोगों से अलग न रहे। उस व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता जो सब कुछ छोड़कर एकांत में जाकर जीवन व्यतीत करे। पश्चिम की उदारवादी व्यवस्था में आज़ादी का अर्थ होता है मनमानी करना। पश्चिम में पूरी स्वतंत्रता के साथ भौतिक वस्तुओं से निरंकुश लाभ उठाने को आज़ादी कहा जाता है।
इस्लाम की दृष्टि से केवल शारीरिक रूप में स्वतंत्र रहने को आज़ादी नहीं कहते, बल्कि वास्तविक आज़ादी आत्मा की आज़ादी है। जब मनुष्य की आत्मा भौतिक आनंदों से दूर होती है तो उसमें विभिन्न प्रकार की विशेषताएं उत्पन्न हो जाती है। पहली बात तो यह कि ऐसे में वह ईश्वर को बहुत अच्छे ढंग से समझती है। जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है वह यथासंभव लोगों की सहायता करने में आनंद लेता है। उसके भीतर त्याग की भावना कूट कूट कर भरी होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की भलाई में स्वयं को ही न्योछावर करने के लिए तैयार रहता है। ये सब कुछ वास्तविक स्वतंत्रता का परिणाम है।
वे लोग जो भौतिकता में डूबे हुए होते हैं और भौतिक वस्तुओं के प्रयोग को ही सब कुछ समझते हैं, उनकी दृष्टि में दूसरों का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे लोगों की नज़रों में दूसरों का महत्व केवल उस समय तक है जब तक वे उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर वे उनके लिए महत्वहीन हैं। ये एक अटल वास्तविकता है कि शारीरिक रूप से स्वतंत्रता का अर्थ होता है भौतिक वस्तुओं से अधिक लाभ उठाना। ऐसे में त्याग और समर्पण अपना अर्थ खो बैठते हैं। यही कारण है कि पश्चिम और इस्लाम के दृष्टिगत आज़ादी के दृष्टिकोणों में बहुत अंतर है।
इस्लाम में जिस आज़ादी का उल्लेख किया गया है वह बहुत ही व्यापक है, जबकि पश्चिम की आज़ादी केवल भौतिकता तक ही सीमित है। पश्चिमी आज़ादी में बहुत से समाज के कुछ मामलों को शामिल कर लिया गया है। आज़ादी के बारे में ईरान की इस्लामी क्रांति के नेता कहते हैं कि वह आज़ादी जो नैतिक मूल्यों और धार्मिक नियमों के साथ न हो वह मनमानी का कारण बनती है और दूसरों के अधिकारों के हनन का माध्यम बन जाती है। ऐसे में वह स्वतंत्रता या आज़ादी जिसमें धार्मिक और नैतिक मूल्यों को अनदेखा किया जाए वह बहुत सी बातों में बाधा का कारण बनेगी, जैसा कि हम वर्तमान समय में पश्चिम में देख रहे हैं।
यदि हम देखें तो पता चलेगा कि स्वतंत्रता आदिकाल से ही मानव जाति की आंतरिक कामना रही है। लंबे समय में दास अपने स्वामियों से स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे हैं। अत्याचारग्रस्त अत्याचारियों से पीछा छुड़ाने में लगे हुए हैं। शोषित वर्ग स्वयं को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयासरत है। इन बातों से पता चलता है कि आज़ादी वास्तव में हर व्यक्ति का मूल अधिकार है। ये ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे प्राप्त करने में मानव को तरह तरह की बाधाओं का सामना रहा है। ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई कहते हैं कि इस्लाम में जो स्वतंत्रता की बात कही गई है वो खुद इस्लाम की देन है। ये पश्चिम से आयात किया गया कोई विषय नहीं है, बल्कि इस्लामी शिक्षाओं और इस्लामी महापुरुषों के जीवन में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे कहते हैं कि आज़ादी तो इस्लामी धरोहरों के समान है। वरिष्ठ नेता कहते हैं कि आज़ादी के बारे में पवित्र कुरान, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पवित्र परिजनों के कथनों में बहुत कुछ कहा गया है।
आज़ादी के बारे में ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि मनमानी को आज़ादी समझना बहुत बड़ी गलती है। आज़ादी और मनमानी दो अलग अलग बातें हैं। वे कहते हैं कि आज़ादी के कुछ नियम हैं। आज़ादी के नाम पर मनमानी को वे विषाक्त भोजन की संज्ञा देते हैं जो हानिकारक होता है। उनका कहना है कि आज़ादी का अर्थ यह नहीं कि जो जी में आए वही करते रहो। आज़ादी इसे नहीं कहते। वर्षिता कहते हैं कि आज़ादी जो ईश्वर की महान अनुकंपा है उसके कुछ नियम भी हैं। नियमों के बिना कोई आज़ादी अर्थपूर्ण नहीं है। वे कहते हैं कि यदि समाज में कोई मादक पदार्थों को दूसरों में बांटे तो ऐसे में निश्चित होकर बैठा नहीं जा सकता, क्योंकि इससे कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार तबाह होते हैं।
वरिष्ठ नेता कहते हैं कि यदि कोई आज़ादी की आड़ में कला, साहित्य, धन दौलत या अन्य चीज़ों का दुरुपयोग करके लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाए, उन्हें दिग्भ्रमित करे या फिर क्रांतिकारी इस्लामी जनता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करे, तो ऐसे में ये कहकर चुप नहीं रहा जा सकता कि आज़ादी है, जो जी में आए करो। वे कहते हैं कि इस प्रकार की आज़ादी दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रचलित नहीं है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि वे देश जो आज़ादी के दावे करते हैं वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर भी कुछ रेड लाइंस हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। जो भी उस रेड लाइन को पार करने का प्रयास करेगा उससे कड़ाई से निपटा जाता है।
आप देखिए कि यूरोप में किसी को होलोकास्ट के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। होलोकास्ट के बारे में कुछ कहना या होलोकास्ट से इनकार पश्चिम में एक बहुत बड़ा पाप है। जो भी ऐसा करेगा उसे निश्चित रूप में दंडित किया जाएगा। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि होलोकास्ट की वास्तविकता है क्या, वास्तव में ऐसी कोई घटना है या नहीं, अगर है तो फिर वह किस रूप में थी। लेकिन आज़ादी का दावा करने वाले होलोकास्ट के मामले में बहुत सख्त हैं। यह उनके लिए रेड लाइन है, इसे कोई भी पार नहीं कर सकता, अन्यथा उसे दंड भुगतना होगा। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ऐसे में हमसे क्यों इस बात की आशा की जा रही है कि हम अपनी इस्लामी शिक्षाओं की रेड लाइन को पार करें।
आज़ादी के बारे में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं कि आज़ादी और भौतिक वस्तुओं से आनंदित होना दो अलग बातें हैं जिनको एक दूसरे के समान नहीं कहा जा सकता। वे कहते हैं कि जो लोग भौतिकता का प्रचार व प्रसार करते हैं वे वास्तव में पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। रही बात आनंदित होने की, तो बहुत से लोग दूसरों पर अत्याचार करके आनंदित होते हैं। कुछ लोग दूसरों का माल छीनकर उसे खर्च करने से आनंदित होते हैं। कुछ मादक पदार्थों के सेवन से खुश होते हैं। कुछ लोगों को अश्लीलता बहुत पसंद है। तो क्या आज़ादी के नाम पर इस प्रकार के लोगों को अनदेखा किया जाना चाहिए? नहीं, समाज में रहते हुए ऐसा नहीं किया जा सकता।
इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार मनुष्य स्वाभाविक रूप में अच्छाई और बुराई दोनों को समझता है। मनुष्य की सृष्टि इस प्रकार से की गई है कि वह बड़ी सरलता से अच्छाई और बुराई को समझ सकता है। ईश्वर पवित्र कुरान के सूरे शम्स की 8वीं आयत में चांद, सूरज, दिन और रात तथा धरती और आकाश की कसम खाने के बाद इंसान की कसम खाते हुए कहता है कि उसने मनुष्य को अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में बता दिया है। इस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन में अच्छाई या बुराई चुनने के लिए स्वतंत्र है। इस्लामी शिक्षा के अनुसार मनुष्य को इसलिए स्वतंत्र बताया गया है क्योंकि उसके भीतर अच्छाई और बुराई को पहचानने की क्षमता पाई जाती है और वह मर्जी से कोई भी रास्ता चुन सकता है।
अच्छाई और बुराई की पहचान करने में सक्षम होने के साथ ही साथ मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। बुद्धिमान होने के नाते भी वो अच्छाई और बुराई को सरलता से समझ सकता है। जानकारों का कहना है कि बुद्धि के आधार पर की गई पहचान वास्तविक पहचान होती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बुद्धि होने के कारण इंसान अच्छाई और बुराई की परख में सक्षम है और अपनी भलाई के हिसाब से रास्ता तय कर सकता है। अब वो अपनी बुद्धि के आधार पर स्वतंत्रता को समझकर उसे अपना सकता है। ऐसे में ये कहा जाना चाहिए कि मनुष्य की अंतरात्मा और बुद्धि उसकी आज़ादी के दो मूल स्तंभ हैं।
ईरान के इस्लामी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, स्वावलंबन और इस्लामी लोकतंत्र। वरिष्ठ नेता वास्तविक आज़ादी के बारे में कहते हैं कि इस्लाम में आज़ादी का आधार एकेश्वरवाद है। वे कहते हैं कि एकेश्वरवाद कोई नारा नहीं है बल्कि हृदय की गहराई से ईश्वर को मानना है और हर प्रकार के अनेकेश्वरवाद को नकारना। कुरान के सूरे आले इमरान की आयत संख्या 64 में कहा गया है कि किसी को भी ईश्वर का भागीदार न बनाओ, बल्कि किसी को भी उसका शरीक न बनाओ, अर्थात केवल एकेश्वर को ही मानो, दूसरे किसी अन्य को नहीं। आयत में बताया गया है कि तुम किसी भी स्थिति में किसी ऐसे का अनुसरण न करो जिसका मार्ग ईश्वर की ओर न जाता हो, बल्कि उसका अनुसरण करो जिसका रास्ता ईश्वर की ओर जाता हो। वास्तव में जिसने संसार में अनेकेश्वरवाद को छोड़ दिया और एकेश्वरवाद को अपना लिया, उसने बहुत ही मजबूत रास्ता अपनाया है। यही वास्तविक आज़ादी है, अर्थात एकेश्वर को अपना कर तुम अनेकेश्वर की बुराइयों से बच गए। यही वास्तविक स्वतंत्रता है।